चिमकीकृत करके पान करने का प्रयत्न किया और हमें पान कराया। रसिकजनों का स्वभाव ही यह होता है कि वे तो रस का पान करते हैं, रस के आस्वादक तो मुख्यतः वे ही है, परंतु उनकी टिप्पणियों से एक आध बूंद जो टपक जाती है उसमें हम सभी के भी चेटा चेटी लग जाते हैं और उनका भी पेट भर जाता है। तो उनके फैला लड़के ही कृतकृत्य होकर के आयुषी रूप के गुणानुवाद का गायन करने के लिए यहां प्रवृत्त हो रहा हूं। वे शक्ति संचार करेंगे। मैं तो एक बहुत छोटा सा बालक हूं। श्री कृष्ण लीला रसपूर्ण रही। चेतन चरितामृतकार कहते हैं कृष्ण लीला मृतपूर्ण चैतन्य चरित्र सुकरपूर्ण। कृष्ण लीला है अमृत का समुद्र, अमृत की बाढ़ तू, और चैतन्य लीला है कर्तूर। यदि कोई रस कितना भी मीठा हो और उसमें सुगंध न हो तो रस सीमित रहेगा, रस सबको आकर्षित करने वाला नहीं हो सकता। जब कपूर किसी रस में रसाला में मिल जाए तो वह रसाला दूर दूर से रस स्वाद करने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। और यदि अमृत में इलायची नहीं मिलाई जाए, यदि कोई रस है उसमें गुलाब जल नहीं मिलाया जाए, चाहे मिश्री का ही वह रस है, बिल्कुल बहुत सुंदर सार है, रस है, परंतु उसमें एक सुगंध नहीं है, तो वह सुगंध वह रस दूसरे लोगों को जो उसके पास में नहीं है दूर से आकर्षित नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति श्री गौर परकर की है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि हमारे श्री श्याम सुंदर बहुत लोही है, बहुत बनिया है। वे मुक्तिम ददात कहित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति दे देते हैं भक्ति योग नहीं देते हैं, बड़ा छिपा करके रखते हैं और उस भक्ति योग को नहीं देते हैं। तत्वतः यदि कभी भक्ति योग देते ही है तो कुछ फीका फीका धुला धुला सा दे देते हैं। सार की बात उनके पास में खुद नहीं है, उनको भी मालूम पड़ता है केवल रस की कुछ भ्रमण, रस में कुछ मिश्रित, कुछ रस उनके पास में है उसमें से ही कुछ तबका देते हैं। जो रस का सार है वह तो श्री बुद्धदेवों के पास में है और उस रस के सार के लिए उनको भी प्रार्थना करनी पड़ती है। यह किंकरी से बहुत खल पाकवाणी यहां पर लिखा हुआ है कृष्ण नारायण सरस्वती का वो वचन, किंकरियों के आगे काकवाणी करते हुए उनको हार खानी पड़ती है और ये कहा कहना पड़ता है वो श्री प्रिया जी का जरा सा प्रसाद हमको प्राप्त हो जाए, कृपा हमको प्राप्त करा दो। तो वो रस उनके उनको स्वयं भी प्राप्त नहीं है और वे स्वयं नपारे एवं निरुद्ध सुविजन प्रत्यात साधना के द्वारा उस रस की स्वयं अभिलाषा करते हैं, स्वयं कामना करते हैं, क्योंकि वह आश्रय जातीय प्रेम उनके पास में स्वयं नहीं है। वह प्रेम है, विस्तार की आवश्यकता नहीं है, यहां पर विस्तार के लिए मेरे पास में इतनी क्षमता नहीं है कि विस्तार कर सकूं इन रसकों के आगे, इसलिए बात को केवल संकेत के द्वारा आगे बढ़ाऊंगा। वह रस यदि कहीं है तो वो श्री ब्रजगोपालों के पास में है। वह रस उनके अनुगति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, किसी दूसरे के अनुगति के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तक कि वेद के उपास्य, वेद के वेद्य श्री श्याम सुंदर के द्वारा भी वह रस प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वांछन्ति यद् भवेयो मुनयो वयंत, उस प्रेम को मुनिगण भी प्राप्त करना चाहते हैं और श्रुतिगण ब्रह्मज्ञा ब्रह्मज्ञा वो श्रुतिगण जो है वह भी उसको केवल ढूंढ ढूंढ रही है, श्रुतियों को भी मिला नहीं। तो जो कृष्ण प्रेम आश्रय जाति जो प्रेम श्रुतिगणों को भी प्राप्त नहीं है, यदि कोई यह विचार करे कि श्रुतियों के सेवन के द्वारा उस प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो यह दुर्व कल्पना ही है। श्रुतियों को स्वयं ही नहीं मिला, तो यदि कोई ये चाहे कि श्रुति मार्ग का सेवन करते हुए, जीवनार्ग का सेवन करते हुए उस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, तो वह प्रेम को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः आशा महो करे दिशा मोहन श्याम वृंदावन के नपगुल औषधि नाम या स्वयं स्वयं हमारे पसंद से हत्या देवी मुकुंद पदवी श्रुति हो जनज्ञान। तो श्रुति केवल उसका ब्रह्मज्ञा कर रही है, वह उसे ढूंढ रही है, श्रुतियों को भी वह प्राप्त नहीं है। तो श्रुति मार्ग के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह प्राप्त किया जा सकता है एकमात्र श्री प्रिया जी के परकर की कृपा के द्वारा ही। पंत मुझे कहने में संकोच नहीं, श्री स्वामी जी के श्री चरणारविंद में वंदना करते हुए वे मुझे क्षमा करेंगे, उनके परकर के श्री चरणारविंद में वंदना करते हुए मैं ये कह सकने में आज साहस कर रहा हूं किसी बल पर कि श्री स्वामी और उनका परकर भी गूंगा है। वह उस परकर का आस्वादन तो लेता है, परंतु वह भी स्वार्थी है, वह उस परकर का आस्वादन लेता है स्वयं ही स्वयं। श्री स्वामी जो आस्वादन लेती है उससे बढ़कर के आस्वादन है सखियों का, सखियों से बढ़कर के आस्वादन है मंजरियों का, परंतु सखी और मंजरी जिस आस्वादन को प्राप्त कर रही है वह आस्वादन भी गूंगा है, और वह केवल गूंगे का गुण है जिसको वे को आस्वादन देखती है, परंतु वे उसका वर्णन नहीं करती है, वे उसका वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है, और यदि वर्णन करती भी है तो वहां पर रेवड़ी बचती है, केवल अपने अपने परकर को दी जाती है। जो स्वामी जी का परकर है, जो श्री विशाखा जी का परकर है, ललता जी का परकर है, श्री ललता जी ने श्री युगल का जो आस्वादन प्राप्त किया, श्री रूप मंजरी जो युगल का आस्वादन प्राप्त कर रही है, रूप मंजरी केवल मंजरी मंजरी लोगों को तो वो बांटेंगी, वहां पर भी रेवड़ी रेवड़ी बटेगी, वह भी हमारे मतलब की वस्तु नहीं है। वहां पर रेवड़ी बटेगी, वहां पर लोग वे जो कुछ भी आस्वादन प्राप्त करेंगी वे अपने अपनों को ही देंगी, उनका वह आस्वादन, उनका वह अनुभव, उनकी वे अनुभूतियां उनके लिए हितकर है, परंतु वे हमारे लिए हितकर नहीं है, उनके लिए होंगी या कोई उनका जो शरणागत हो, कोई जो उन तक पहुंच गया हो उसके लिए भी हितकर होंगी, परंतु श्री रूप मंजरी का ये जो गूंगे का आस्वादन है, श्री रूप मंजरी का ये जो रेवड़ी वासना है, यह रेवड़ी वासना उन्मुक्त रूप से एक सदावर्त के रूप में प्रकट होता है, तब जबकि श्री रूप गोस्वामी होकर के ये प्रकट होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रूप मंजरी या तो गुंगे की तरह से आस्वादन करेंगे, उनका जो आस्वादन है वह गुरु का आस्वादन है, या फिर वहां पर रेवड़ी बटेगी, परंतु रूप मंदिर में शास्त्रों के विवेचन करते हुए उसका प्रतिपादन करने की पूर्णतः सामर्थ्य है, परंतु वे शास्त्रों के विवेचन में पड़ती नहीं है। ब्रजगोपालों को पूर्णतः इस बात का ज्ञान है कि श्री कृष्ण क्या वस्तु है। ये प्रेम में कहती है कि नकल गोपदानंद में भगवान अखिल देवना मंत्र आत्म में विघ्न भारती को विश्वगुप्त सखे उदयवान पाकिस्तान को ले, यह सिद्धांत तत्व का ज्ञान विराह अवस्था में उनको है, क्योंकि विराह भाव वह भाव है जो कि सूर्य के समान कृष्ण के माधुरी का भी प्रकाशक है और कृष्ण के ऐश्वर्य का भी प्रकाशक है। परंतु जैसे ही कृष्ण उनके सामने आते हैं, कृष्ण मिलन का वह माधुर्य कोट कोट चंद्रमा के प्रकाश के समान उन्मादक होकर के केवल कृष्ण के माधुर्य का ही आस्वादन कराता है। विरह की स्थिति में तो उनमें ऐश्वर्य का ज्ञान ही प्रकट हो जाता है, परंतु मिलन की स्थिति में श्री ब्रजगोपालों के मुख से कृष्ण के केवल माधुर्य का ही वर्णन होता है, माधुरी का ही वे आस्वादन अपने परिजन के सामने कहती है। विरह की स्थिति में ऐश्वर्य माधुरी दोनों का वर्णन करने लगती है, परंतु मिलन की स्थिति में केवल माधुरी का आस्वादन करती है। तो श्री ब्रजगोपालों को ऐश्वर्य का ज्ञान तो है, परंतु ऐश्वर्य का ज्ञान होते हुए भी कृष्ण माधुरी की वह मधुरिमा, कृष्ण माधुरी का वह उन्मादकता कोट कोट चंद्रमा की उन्मादकता से भी बढ़कर के उन्हें ऐश्वर्य का वर्णन कर सकने की का अवकाश ही प्रदान नहीं करता, और वे केवल माधुरी के रूप वर्णन में ही, माधुरी के आस्वाद में ही केवल विश्वास रह जाते हैं। जब अवस्था में कहीं थोड़ा सा निरूपण तो करती है, परंतु वहां पर भी प्रेम की अतिशयता उस ऐश्वर्य को, संपूर्ण ज्ञान को उस प्रेम का अंग बना करके ही प्रस्तुत कर देती है, और वे निज संबंध के द्वारा ही उस ऐश्वर्य का दर्शन करती है। जहां जहां ऐश्वर्य का दर्शन करती है वहां निज संबंध के द्वारा ही उस ऐश्वर्य का वे विचार करती है, ऐश्वर्य रूप में उसका विचार नहीं करती है, निज संबंध से ही उसको देखती है। नंदबाबा यदि बड़े देवता के द्वारा कृष्ण को पूजित देखते हैं तो निज संबंध से ही देखते हैं कि वो नारायण की कृपा से हमारे पूर्वज श्री पर्जन्य महाराज के तप के प्रभाव से आज नारायण ने हमको ऐसा बेटा दिया जिस बेटे की बड़े बड़े देवता आराधना कर रहे हैं। वहां पर निज संबंध से देख रहे हैं, ऐश्वर्य का दर्शन तो कर रहे हैं, ऐश्वर्य का अनुभव भी हो रहा है। गोलोक दर्शन में भी श्रुतियों के द्वारा उपासित कृष्ण का दर्शन किया जा रहा है, परंतु निज संबंध से ही वहां पर कृष्ण को देखा जा रहा है, और वहां पर ऐश्वर्य का दर्शन निज संबंध के द्वारा माधुर्य से आवृत होकर के ही विराजमान है। अतः जो परकर है वह गुंगे का स्वाद लेता है, परकर गुंगा है, श्री कृष्ण परकर गुंगा है, परंतु जो कोई वाचाल है तो वह वाचाल है श्री गौर परकर, क्योंकि इसका शास्त्रों के विवेचन में भी शास्त्रों का तुलनात्मक परंपरा शोधन करते हुए शास्त्रों के परम सार को प्रस्तुत कर सकने का, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए परम सार को प्रस्तुत कर सकने का और एक तार्किक और बौद्धिक आधार पर शास्त्रों के उस सार को प्रस्तुत कर सकने का अधिकार यदि किसी को है और सुविधा यदि किसी को प्राप्त है तो वह सुविधा प्राप्त है, वह अवसर प्राप्त है श्री रूप गोस्वामी। अतः श्री रूप गोस्वामी का जितना हमारे ऊपर अवदान हो सकता है, जितना वे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, इतनी रूप मंजरी नहीं हो सकती। फिर जब रूप मंजरी नहीं हो सकती तो फिर सखियों की और स्वयं स्वामी जी की बात को कहना क्या, स्वामी जी का जो सखियों का और श्री स्वामी जी का जो आस्वादन है उससे बढ़कर के रूप मंजरी का आस्वादन है, फिर श्याम सुंदर की तो कहना ही क्या। तो जब रूप मंजरी को वह वस्तु प्राप्त नहीं है, वह सुविधा प्राप्त नहीं है, तो फिर दूसरे को तो भोगी का है। श्री रूप गोस्वामी जी के इस महिमा को, क्योंकि ये ब्रह्म तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये परमात्म तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये भगवत तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये अवतार लघु अवतारमृत के द्वारा अवतारों का जो विवेचन है, अवतारों की विभिन्न जो विस्तृतियां हैं, अवतारों के کے دن میں جو پرکار ہے ان کا تلاتمک اور ان میں پاروتھ اوتاروں میں شری کرشن سوروپ کی سوئم روپتا کا ویوچن کر سکنے کا ان کو ادھیکار پراپت ہے, روپ مندری کو وہاں ادھیکار پراپت نہیں. اتنا یہ ہمارے لیے سدھانت کو سدھر کرنے میں شری روپ گوسوامی جتنے اپیوگی ہیں اتنا کوئی دوسرا اپیوگی نہیں ہے. شری روپ گوسوامی جی کے سمپورن اودان کو جو کہ بہمکھی ہے, اس بہمکھی اودان کو جس دشٹی سے بھی دیکھا جائے وہ اپورو ہے, وہ وانی کے پری ہے. شری ورنداون کے رسوپاسنا کے پانچ جو تتو ہے اپاسیہ تتو, ان اپاسیہ تتوؤں کا جیسا وویچن شری روپ گوسوامی صاحب نے کیا اور اس کو اپنے لیلا کال میں جیسا پرکٹ کر کے دکھایا, اس کا پروگاتمک سوروپ جیسا دکھایا, کہ وہ سیدھانتک سوروپ ہی نہیں پروگاتمک سوروپ جیسا دکھایا, ویسا کوئی دوسرا دکھا سکنے میں سمرتھ ہے ہی نہیں. سدھا وشیش پیتے شری ملتے رنگتے ہو نم شری گوند سوروپ کو پرکٹ کیا اور گوند سوروپ کو پرکٹ کر کے جس بھاو کے دوارا شری گوند سوروپ کی سیوا پرکٹ کی, وہ سادھکا کے لیے جو سادھن کے پرم اپاسیہ تتو ہو کر کے براجمان, جو سادھن کے ادھشاتری دیوتا ہو کر کے براجمان, اویے تتو کے جو ادھشاتری دیوتا ہو کر کے براجمان ہے, ان شری گوند تتو کو شری گوند سوروپ کو انہوں نے سامنے پرکٹ کیا. شری گوند یوگپیٹھ اور گوند کو گوند سوروپ کی استھاپنا اور اس کے دوارا سادھن تتو کے ادھشاتری دیوتا کے پرتی سادھک کو جیسے انہوں نے لگایا, وہ شری روپ گوسوامی صاحب کی سدا سدا پوری ورنداونی اپاسنا میں ادھناتن اور آگے آنے والی جتنی اپاسنا ہے وہ اپاسنا میں وہ سرودا سرودا وہ بندنی رہے گا, سمرنی رہے گا. پھر شریمد ورنداونی تتو کا ورنداونی اپاسنا پدھتی کا دوسرا اپاسیہ تتو ہے شریمد بھاگوت آستھانا آسواد رسکیشہ ہے. شریمد بھاگوت کے گوڑتم سدھانتوں کو جیسے انہوں نے پرکٹ کیا, شری راکیا کے سدھانت کو شری اپنے تینوں ناٹکوں کے مادھیم سے للت مادھو وکٹ مادھو اور دانکل کومدی کے دوارا اور پھر لیلا استموں کے دوارا جس طرح سے انہوں نے پرکٹ کیا, شری وندنا میں سو مالا کے انترگت شری گوند گوداولی کے انترگت جیسے شری گوند کی گوداولی گاتے ہوئے جو شریمد بھاگوت کے تتو اور شریمد بھاگوت کا جو پرسنگ ہے اس کے سدھانتوں کو جیسے پرکٹ کیا وہ اپنے آپ میں اپورو ہے. شریمد بھاگوت کے اس تتو کو شریمد بھاگوت کا جو پرکیا تتو ہے اس پرکیا تتو کو پرکیا رسمئی اپاسنا پدھتی کے گوڑ سدھانت کو جب شری روپ گوسوامی صاحب اپنے وگد مادھو ناٹک میں پرکٹ نہیں کرتے تو کون جان سکتا تھا کہ ناسی انکھے کشنا دیوتا پسم آیا مند مانس سپاش استھان سوان سوان دارن دیوتا, اس بات کو کون جان سکتا تھا. زیادہ وستار کی ضرورت نہیں ہے, ایک دشا نردیش مات کر کے اپنی وانی کو کرتکت کرنا ہے. شری ورنداونی اپاسنا کا تیسرا جو اپاسیہ تتو ہے وہ ہے سجاتی اشرے سادھو سنگت پتو ورے سجاتی ویشنو کا سنگ, اور جتنے بھی ویشنو آئے ان سب کے سنرکشن کا دائتو یعنی کسی نے لیا تو وہ روپ سناتن اور ان کے بعد میں شری جی گوسوامی صاحب نے ان کے سنرکشن کا دائتو سویکار کیا. تو ویشنو سیوا جو کہ سادھن نہیں ہے, جو کہ سادھ ہے وہ ویشنو سیوا انہوں نے سادھ کیسے ہو سکتی ہے اس بات کو دکھایا. اور سجاتی ہے شری رگنا داس گوسوامی صاحب کے ساتھ میں کبھی بہار کر کبھی وچار کرتے ہوئے کبھی شری سناتن گوسوامی جی کے ساتھ میں وچار کرتے ہوئے اس لیلا کا جو کچھ بھی چنتن کر رہے ہیں کہ شری پریا جی کی بہنی کیسے سرپڑی کے سامان لہراتی ہے, شری سناتن شری داس گوسوامی نے جب کھیر کھائی تو ان کو افرا کیسے ہوا, ان सारी बातों पर विचार करते हुए सजाती वैष्णवों के साथ में जैसे भी विचार कर रहे हैं और उनको जैसे आगे प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, भजन को जैसे सुपुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिनको भी भेजा श्री महाप्रभु ने उनके रूप सनातन के पास में ही भेजा, उनके आश्रम में ही भेजा। और नाम संकीर्तनम और श्रीमद मथुरा मंडली स्थिति श्री वृक्ष को प्रकट करने में, वृक्ष के तत्व को प्रकट करने में जैसा श्री रूप सनातन का यहाँ के विभिन्न लीला स्थल विहार स्थल उन सबों को प्रकट करने में श्री रूप सनातन का जो योगदान रहा है वह योगदान अपूर्व। सैद्धांतिक विवेचन में भक्त साम्य सिंधु और उज्जवल नीलमणि का कोई तुलना नहीं। रखती बात बहुत कही जा रही थी, परंतु इतना सारा शास्त्रों का पहाड़ था कि उसे संकलित करना और उसे क्रमबद्ध करके उसमें पूर्वापर संबंध को स्थापित करना यह संयोजन का काम बहुत बड़ा था। माना श्री गुरुप्रसाद पाद ने जो कुछ बात कही कोई नई नहीं है, वहां शास्त्रों के द्वारा उत्पादित है, कोई नई बात थोड़ी कही जाता है। जो शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है उसी बात को वे पुस्तक कर रहे हैं, परंतु वह इतना क्रांत विक्रांत और खंडित था कि उसको एक सूत्र में बांध लेना यह बहुत बड़ी बात थी। और उतना बड़ा बड़ा सिद्धांतों का पहाड़ था कि उसको एक क्रम से सजो देना यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था। श्री रुद्रेश्वर साहब ने सारे विवेचन को करते हुए जिस सूक्ष्मता के साथ में निर्दोष रूप में जो परिभाषाएं थी वे परिभाषाएं अपूर्व है। भक्ति की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा, भाव की परिभाषा, ये सारी की सारी परिभाषाएं अपने आप में अपूर्व है। सम्यक मुसल के स्वांत मोत्प श्यांक भाव सुसांग आत्मा जो ही प्रेम निगर देते, इस प्रकार प्रेम की परिभाषा कहीं भाव की परिभाषा जिस तरह से परिभाषाएं देते हैं और वे परिभाषाएं जैसे अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन सारे दोषों से रहित होकर के जितनी सार्थक होकर के विराजमान है वे परिभाषाएं अपने आप में एक मानदंड है, उनको देख करके आश्चर्य होता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में, श्री वृंदावन के संरक्षण के क्षेत्र में, वैष्णव के संरक्षण के क्षेत्र में, शास्त्र विवेचन के क्षेत्र में श्री हिंदुस्तान पाद का जितना अवदान है वह अवदान अपूर्व है। और वह अवदान श्री महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी के चरणाश्रित होने पर जहां हमको सारे शास्त्रों के सिद्धांत को जान सकने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वहां पर श्री राहत श्री गौर लीला का भी अनुसंधान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और वहां श्री राहत कृष्ण की लीला का भी आस्वादन प्राप्त करने का अवदान प्राप्त होगा। जब राधा कृष्ण की लीला का आस्वादन किया जाए तो केवल प्रिया चिंतन की लीला ही रह जाएगी, केवल बृंदहारी रह जाएगा, परंतु यदि गौर लीला यदि श्री रुद्रम प्राप्त चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए तो श्री रूप के आश्रय ग्रहण करने पर, रूप आश्रित भक्ति करने पर, गौर भक्ति, श्री गोविंद भक्ति और श्री ब्री भक्ति, ये तीनों की तीनों भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। श्री गौर भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति और श्री ब्री भक्ति, ये तीनों की तीनों भक्ति जो है वह श्री रूप गोस्वामी के आश्रय के द्वारा अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए काहे को कोई अलग ग्राहक ग्रहण करेगा, कोई मूल को सहनी पकड़े, जिस मूल को पकड़ने से तीनों भक्तियों की एकता प्राप्ति हो जाएगी। रूप के चरणाश्रय पढ़ने ग्रहण करने पर, रूपानुगत जनों का आश्रय ग्रहण करने पर श्री गौर भक्ति, गुरु भक्ति, गौर भक्ति और कृष्ण भक्ति, ये तीनों स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगी। अतः श्री रूप अनुगत जनों के श्री चरणारविंद में जो यहाँ पर विराजे हुए हैं उन सब रूप अनुगत वैष्णवों के श्री चरणारविंद में वंदना करते हुए इन वैष्णवों से यही प्रार्थना है कि श्री रूप चरणामृत में हमारी भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा सत्य संचार करें।
आप लोगों ने श्री भट्ट जी के मुख से श्रवण किया, नई नई बातें मालूम जैसे भी चल रही हैं। राधा और कृष्ण मूक हैं, उनका परिवार जितने परिकर हैं सब मूक हैं। तात्पर्य क्या क्या रस है उनकी अपनी अनुभूति रखते हैं दूसरों को नहीं दे पाते। सिर्फ रूप गोस्वामी हैं, जो रूप मंजरी हैं वो नहीं दे सकी। स्वरूप दामोदर जी ललिता हैं, राय रामानंद जी विशाखा हैं, वो लोग भी सरस को नहीं दे सके। उन लोगों ने भी रूप गोस्वामी के माध्यम से उनके अंदर में छुट्टी करा करके दिया। इसलिए रूप गोस्वामी की समर्थ है जो चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट कर सके। विशेष करके पार्थिव भाव काश की स्थापना ये सहज बात नहीं थी। महाप्रभु जी ने इसके लिए कुछ नहीं किया, सब रूप गोस्वामी के ऊपर निर्भर किया। स्वरूप दामोदर ने उन्हीं के ऊपर, राय रामानंद ने, सनातन गोस्वामी तो एक एक से हैं। रूप गोस्वामी के गुरु सनातन गोस्वामी है, किंतु रूप गोस्वामी भी ऐसा सनातन गोस्वामी भी इसी कैसी सुंदर वंदना करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी यदि नहीं आते तो कृष्ण का सारा परिकर भरा रह जाता। महाप्रभु के परिकर भी स्वरूप दामोदर राय रामानंद रहते, किंतु न जाने क्यों रूप गोस्वामी के सिर पर भी इस महिमा का सेहरा बंधना था। इसलिए उनके माध्यम से इन लोगों ने कराया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं रस सिंधु का एक छोटी सी कण आपको बतला रहा हूं। रूप गोस्वामी को उनके हृदय में मैंने सोची थी, आप लोग सभी लोग श्री स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य सभी मिलकर के उसके ऊपर निष्ठा करें, जो हमारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करे। इसीलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जीवन भूतले, नरोत्तम ठाकुर जी ने बहुत सोच विचार करके कहा, दूसरे के लिए नहीं कहा। इसलिए इन्होंने एक दिशा दिग्दर्शन इन्होंने की, ये सारा कृष्ण का परिकर मौन है, महाप्रभु के भी परिकर करीब करीब मौन है, क्योंकि ये मुखर हैं। रूप गोस्वामी के रूप में सारी लीलाओं का सार रस तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, श्रीमती श्री कृष्ण तत्व क्या है, इन चारों का जो कि महाप्रभु जी और रामानंद के संवाद इत्यादि था, सबका इन्होंने सूत्र के रूप में बड़े सुंदर रूप से उन्हें प्रकाशित किया। इसलिए हमारा सारा समाज ही नहीं, केवल गौड़ वैष्णव समाज नहीं, जितने भी भक्ति के संप्रदाय हैं, यहां तक कि मैं देखता हूं उनको देखा था, दृष्टान जी का नाम लिए, कर्तात्री जी का, अखंडानंद जी का, वो भी उनका जूठन लेकर के कुछ देते थे। उनके भी साहित्य में और उनके ज्ञान में कुछ नहीं था, जब उनको कुछ कहना होता भक्ति रस पर, तो रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर के, कभी कहने से रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर के उनका जूठन लेकर के देते थे और उनका नाम नहीं करते थे अकृतज्ञ के समय। तो इसलिए रूप गोस्वामी का जो अवदान जो उन्होंने वर्णन किया, सब कुछ में बहुत सुंदर रूप से व्यक्त किया, जो कि हम लोग भी नहीं जानते थे, उन्होंने ये सब चीजों का दिग्दर्शन कराया। और समय भी कम है, तभी आप लोग डटे रहेंगे, 7 बजे तक समाप्ति का था, 7 हो गया, तभी 1 घंटा और आप लोग चुपचाप बैठे रहे और श्रवण कीजिए। अभी देखिए कैसे कैसे सुंदर रस प्रवाहित हुए। अभी हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी भागवत भूषण है, बहुत विद्वान आदमी है, महाप्रभु के विचारों में बहुत सुंदर रूप से प्रविष्ट है। इसलिए कुछ संक्षेप से आप लोगों को कुछ श्रवण कराएंगे।